हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। तो ये हमने थोड़ा सा इस मंत्र जपने के यज्ञ करने की आपको विधि सिखाई है। ये यज्ञ प्रतिदिन अपने घर में करना चाहिए, बहुत वातावरण पवित्र और शुद्ध हो जाएगा। बाहर का वातावरण भी शुद्ध होगा, हृदय भी पवित्र हो जाएगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और भगवान की कृपा प्राप्त होगी। 7 मिनट लगते हैं, 8 मिनट लगते हैं मुश्किल से एक यज्ञ करने में। एक माला का एक यज्ञ होता है। तो कृपा करके ये करने का नियम बना लीजिए। ये हमारी आपको करबद्ध विनती है। आप सब लोग जो पहले करते हैं भाग्यशाली हैं, नहीं तो आज से ये यज्ञ करने का नियम बना दीजिए। आपके घर में प्रतिदिन यज्ञ होगा और प्रतिदिन भगवान की स्मृति होगी। भगवान आपके घर में प्रतिदिन पधारेंगे, मंगल ही मंगल होगा। हरे कृष्णा। अब हम करेंगे ध्यान। भगवान गीता का उपदेश करने वाले श्री कृष्ण भगवान के चरणों का ध्यान करेंगे। इसके लिए सब लोग हाथ जोड़ लीजिए, आंखें भी बंद कर लीजिए, भगवान के चरणों का ध्यान कीजिए। भगवान कुरुक्षेत्र के रणभूमि में खड़े हैं, अर्जुन के रथ के ऊपर। एक हाथ में भगवान के रथ के घोड़ों का लगाम है, दूसरे हाथ में भगवान के घोड़ों को नेम में संयम में रखने के लिए चाबुक है और ज्ञान की मुद्रा बनाई हुई है। अर्जुन को गीता का संदेश दे रहे हैं। ये भगवान की छवि को आंखों के सामने पार्थ सारथी को रखते हुए ये मेरे पीछे। आप पहले मैं कहूंगा, आप सुनेंगे, फिर आप दोहराएंगे, रिपीट करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। देवाय। देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानंदा। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है आज के भगवद गीता के सत्संग में। भगवद गीता दो शब्द हैं, भगवत और गीता। इन दो शब्दों में भगवत शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। गीता से भगवत शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। भगवत का मतलब भगवान का और भगवान के समान। भगवत का अर्थ होता है जस्ट लाइक गॉड। भगवान और भगवान के शब्द में कोई अंतर नहीं है। तो भगवत गीता, भगवान जब बोलते हैं तो उनके मुख से गीत निकलता है। उनका बोलना ही गीत है। इतना मीठा होता है, इतना मधुर होता है, इतना हितकारी होता है कि वो गीत बन जाता है। भगवान जब बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं? भगवान स्वयं बोलते हैं भगवत गीता के 10वें अध्याय में, तव हित काम्यया, तेरे हित की कामना के लिए बोल रहा हूं। तव हित काम्यया, तेरे हित की कामना के लिए अर्जुन बोल रहा हूं, तेरे भले के बोल रहा हूं। फॉर योर बेनिफिट आई एम स्पीकिंग। गीता जीवित शास्त्र है। जीते जी कैसे समस्याओं का समाधान करके अपने परेशानियों के उलझनों से निकलकर अपने कर्तव्य कर्म को ठीक तरह से करके भगवान के साथ संबंध स्थापित करके मानव जन्म को सफल कैसे किया जाए, ये गीता का संदेश है। मरने के बाद नहीं, जीते जी। गीता इज ए लिविंग स्क्रिप्चर। जीते जी व्यक्ति में जितनी काम करने की शक्ति है वो सारे की सारी शक्ति को गीता की शिक्षा, भगवत गीता की शिक्षा उस आदमी को 100% 100% अपने काम करने की शक्ति प्रदान करता है। जितनी आप में कैपेबिलिटी है, जितनी आप में योग्यता है, उस सारी योग्यता को गीता निखार करती है। इट ब्रिंग्स आउट ऑल योर टैलेंट्स। गीता का ये बहुत बड़ा उद्देश्य है। तो भगवत गीता कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की क्रांति है। गीता उपनिषद है। उपनिषद वेदों का अंग होता है और उपनिषद के ज्ञान को बोलते हैं अरण्य ज्ञान। क्या बोलते हैं? अरण्य ज्ञान, अरण्य का अर्थ होता है वन, अरण्य का अर्थ होता है फॉरेस्ट, अरण्य का अर्थ होता है जहां रण नहीं हो, जहां लड़ाई नहीं हो, जहां शांति हो, उसको अरण्य बोलते हैं। तो वेदों का ज्ञान, उपनिषद का ज्ञान एकांत में, अरण्य में, वन में दिया जाता था, लेकिन कृष्ण की क्रांति ये है, अरण्य के ज्ञान को रणभूमि में दे रहा है। इज गिविंग द नॉलेज विच वॉज सपोज टू बी इम्पार्टेड इन ए पीसफुल प्लेस लाइक ए फॉरेस्ट, ही इज इम्पार्टिंग दैट सेम नॉलेज इन बिटवीन इन द मिड्स ऑफ द टू आर्मीज इन ए बैटल फील्ड। अरण्य का ज्ञान रण में दे रहा है, रणभूमि में दे रहा है। दिस इज द फर्स्ट रिवोल्यूशन ऑफ कृष्ण, भगवान की पहली क्रांति ये है। दूसरी क्या क्रांति ये है कि भगवान ने यज्ञ को यज्ञशाला से निकालकर आपके घर में, आपके दुकान पे, आपके मकान पे लाके खड़ा कर दिया। यत करोषि यद स्नासि यद जहोषि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तद कुरुष्व मद अर्पणम, तेरा यज्ञ हो गया। सो ये बहुत बड़ी क्रांति है गीता की। गीता देने से पहले दो तो व्यासदेव ने दो रास्ते लिख दिए थे, एक रास्ते का नाम है निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग सन्यासियों के लिए होता है, संसार को छोड़ के भगवान के खोज में निकलते हैं। एक प्रवृत्ति मार्ग होता है जो गृहस्थियों के लिए होता है, थोड़ा सा अपने लिए काम करेंगे, थोड़ा भगवान का भजन करेंगे। प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग तो व्यास देव ने पहले ही वेदों में बता दिया था, तो भगवत गीता देने की जरूरत क्या थी। दोनों के बीच का भक्ति का मार्ग है भगवत गीता में। भगवत गीता में भक्ति का मार्ग है जो सन्यासी और गृहस्थी दोनों को भगवान तक पहुंचाने का सहायक है। यह विशेषता है भगवत गीता की, बीच का रास्ता है भागवत मार्ग इसको बोलते हैं। भागवत मार्ग या भक्ति का मार्ग, और ये जो भक्ति है, ये भगवत गीता है, ये भक्ति का शास्त्र है। और भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरा हृदय है, गीता मे हृदयम। महाभारत में श्री कृष्ण कहते हैं गीता मेरा हृदय है, दिल है, और ये मैं दिल केवल मेरे प्रेमी भक्तों को देता हूं और किसी को नहीं देता। दिल आदमी किसी को देता है? यू गिव योर हार्ट टू एनीबडी एंड एवरीबडी इन द स्ट्रीट। अपनी दिल आप किसी को दोगे क्या, गली में चलते हुए किसी आदमी को? नहीं। किसको दोगे? जो आपसे प्रेम करता है, अथवा जिससे आप बहुत प्रेम करते हो, उसको दिल निकाल के दे देते हो। सो कृष्ण की दिल गीता अर्जुन के ऊपर प्रेम और करुणा के कारण मुख से छलक के बाहर निकल के आ गई। तो गीता प्रेमी भक्तों के लिए है, भागवत मार्ग है, भगवान को जीते जी प्राप्त करने का सरल रास्ता है। भगवान को जीते जी प्राप्त करने का सरल रास्ता है गीता, भगवत गीता। एक और बात आपको बता दें, उपनिषद, गीता उपनिषद है। उपनिषद का ज्ञान केवल द्वेजों को पढ़ने का अधिकार है, ब्राह्मण को, और गुरुजी के चरण में जाके पढ़ने का अधिकार है। लेकिन व्यास देव ने कृष्ण की प्रेरणा से महाभारत के बीच में गीता को रख दिया, और महाभारत के लिए व्यास देव ही कहता है सर्वसाधारण जनता के लिए स्त्री वैश्य शूद्र कोई भी संसार का व्यक्ति महाभारत से लाभ ले सकता है। तो उपनिषद को वैसे तो पढ़ने का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन महाभारत के अंतर्गत उपनिषद देने से आप सबको उसको पढ़ने का अधिकार है। मेरी माता, आप भी उपनिषद गीता को पढ़ सकती हो, लेकिन उपनिषद पढ़ने के लिए अधिकार नहीं है शास्त्र का, लेकिन गीता सबको अधिकार भगवान ने दे दिया। इसको महाभारत में बीच में रख दिया। मध्य महाभारतम अष्टादश अध्यायनी मम्ब, 18 अध्याय रूपी ये माता गीता महाभारत के मध्य में भीष्म पर्व में 25वें अध्याय से लेकर 43वें अध्याय तक 25-43 चैप्टर, ये बीच में भीष्म पर्व में है, गीता महाभारत के अंदर है, लिखा गणेश जी ने है, लिखित फारम ने गणेश ने इसको लिखा है, व्यास देव ने बोला है, जो गीता हम पढ़ रहे हैं व्यास देव ने बोला है, गणेश जी ने लिखी है, जो गीता हम सुनेंगे संजय बोल रहा है, धृतराष्ट्र सुन रहा है हस्तिनापुर में, और असली गीता का बोलने वाला कृष्ण है और सुनने वाला अर्जुन है, और ये कुरुक्षेत्र में हो रहा है, और कुरुक्षेत्र में भी एक जगह है, कुरुक्षेत्र 84 कोस में है, 84 कोस 84 डबल माइल्स, माइल प्लस माइल्स 2 माइल्स इज इक्वल टू 1 कोस, 84 कोस कुरुक्षेत्र इज 84 मोर देन 84 स्क्वायर, यू कैन से किलोमीटर वाइज इट इज अप 300 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट। उसमें एक जगह है, उधर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है, बहुत बड़ा विशाल पीपल का पेड़ आज भी है, ज्योतेश्वर उस जगह का नाम है, ज्योतेश्वर, ज्योति ज्योतेश्वर, जहां गीता का प्रकाश, ज्योतेश्वर में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई, वो जगह आज भी आप जाके देख सकते हैं, एक 150 किलोमीटर दिल्ली से पंजाब की तरफ जाते हुए कुरुक्षेत्र पिपली आती है, अंदर जाएंगे 7 किलोमीटर तो ज्योतेश्वर आएगा, उस स्थान पे भगवान ने गीता का ज्ञान अर्जुन को आज से 5000 साल पहले दिया। तो गीता 18 अध्याय, अब देने वाले का देखो, देने वाले की महिमा क्या है, परपन्न पारिजाताय, ये गीता की, गीता में कृष्ण की प्रार्थना है, परपन्न पारिजाताय तोत्रे वे त्रैक पाणि ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत द्वये नमः। कैसा है कृष्ण, परपन्न पारिजाताय, पारिजात कल्प वृक्ष जैसे होते हैं ना, जिसे जो मांगो वो देता है, कृष्ण कैसा है, जिसे जो मांगो वो देता है, लेकिन किसको, जो उनके चरण पकड़ लेता है, परपन्ना, परपन्ना का मतलब पांव पकड़ना, परपन्ना मीन्स भगवान के चरण पकड़ना, जो भगवान कृष्ण के चरण पकड़ लेता है, शरण ले लेता है, भगवान उसको सब कुछ दे देते हैं, पारिजात है, कल्प वृक्ष है, उसकी सब इच्छा पूरी करते हैं, कैसे हैं, तोत्रे वैक त्रई पाणई, एक हाथ में तो घोड़ों का लगाम है, दूसरे हाथ में चाबुक है, और मुद्रा ज्ञान की है, ज्ञान मुद्रा, कृष्ण गीता अमृत दोहे नमः, गीता के अमृत का दोहन कर रहे हैं, कैसी है गीता, सर्व उपनिषदो गावो दोगदा गोपाल नंदना, अगर सारे वेद सारे शास्त्र पूरा ज्ञान अगर गाय का रूप धारण कर ले तो गाय में विशेष चीज क्या होता है, दूध, लेकिन गाय का दूध निकालना भी आप में से किसी को नहीं आता है, आता है, गाय से दूध कैसे निकालते हैं, गाय से दूध निकालना आता है किसी को, नहीं आता है, लेकिन सारे शास्त्र रूपी अगर गाय हो तो दूध निकालने वाला गोपाल नंदन है, जिसके घर में 9 लाख गाय हैं, वो तो ऐसे दूध सीधा मुंह में पीना भी उसको आता है, वो दूध निकालने में बहुत बड़ा प्रवीण है, इतना होशियार है, जब दूध निकालता है तो टेढ़ी आंख से देखता है, गोपियां पीछे से जाती हैं तो ऐसे उठा के और दूध को मारता है तो सीधा गोपी की आंख में लगता है, टप, देखती है क्या हो गया, वो आप जैसे क्या कहते हैं इसको, दिवाली में पिचकारी लेते हैं ना, वो दूध की पिचकारी डायरेक्ट गाय के थन से मारता है, ये उसमें बहुत बड़ी कला है, वो गाय का दूध दुहने में बहुत बड़ा प्रवीण है, दोगदा गोपाल नंदना, वो गोपाल नंदन कृष्ण ने सारे शास्त्रों का दूध निकाला। दूध निकाला तो दूध किसके लिए है? बछड़े के लिए, गाय के। पार्थो वत्स, पार्थ का क्या अर्थ होता है? प मतलब परमेश्वर, अर्थ मतलब परमेश्वर के लिए जो अपना जीवन अर्पण कर दे उसको पार्थ बोलते। पार्थ वो जो अपना सारा जीवन परम पुरुष भगवान के लिए अर्पण कर दे, उसके काम के लिए जीवन को दे दे, उसको पार्थ बोलते हैं। वैसे प्रथा अर्जुन की मां का नाम था कुंती और दूसरा नाम था प्रथा, तो प्रथा पुत्र के नाम से इसको पार्थ बोलते हैं। लेकिन संस्कृत में पार्थ का अर्थ होता है परमेश्वर की निमित्त जो अपना जीवन दाव पे लगा ले, उसकी सेवा में अपने को अर्पण कर दे, वो पार्थ। तो ऐसे पार्थ को भगवान ने बनाया क्या? बछड़ा, काफ। सारा दूध प्रेम से पिलाया भगवान ने, सारे शास्त्रों का सार गीता के रूप में कृष्ण ने अर्जुन को दिया। और फिर एक लाइन और लिखी है, दुग्धम गीतामृतम सुधीर भोक्ता। अगर आप भी जीवन में थोड़े धीरजवान बन जाओ, सुधीर, सु का मतलब है बहुत ज्यादा अच्छा, अगर आप सुधीर बन जाओ तो इस गीता के अमृत का पान आप भी कर सकते हैं। ये गीता का अमृत आज भी आपके लिए अर्जुन छोड़ के गया है। हमको अर्जुन का बहुत बड़ा आभारी होना चाहिए। वी शुड बी ग्रेटफुल टू अर्जुन, बिकॉज ऑफ हिम वी गॉट भगवद गीता। वी शुड बी ग्रेटफुल टू हिज ग्रैंड सन परीक्षित महाराज। हमको अर्जुन के पोते परीक्षित का भी बहुत बड़ा आभारी होना चाहिए कि श्रीमद् भागवत परीक्षित के माध्यम से इस पूरे विश्व को मिला है। दो महान शास्त्र गीता और भागवत अर्जुन और परीक्षित के माध्यम से पूरे विश्व को मिले हैं। तो ये कितने महान भगवान के प्रिय भक्त रहे होंगे। इसलिए बात इसलिए ये कर रहे हैं कि गीता को समझना है, गीता का आनंद लेना है, तो भगवान का प्रेमी भक्त बनना पड़ेगा। प्रेमी भक्त भगवान के बनने के बगैर गीता समझ में नहीं आ सकती, सिर्फ अक्षर रह जाएंगे। ओनली वर्ड्स, मीनिंग विल ओनली मैनिफेस्ट, उसका अर्थ तब आपके ऊपर प्रकाशित होगा जब आपके हृदय में भक्ति के भाव, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा, तब गीता अपने आप अपना अर्थ आपको समझाने लगेगी। गीता में पहले अध्याय में गीता कही गई कौन सा वातावरण था, the atmosphere before Gita was spoken, वो सारा वातावरण बताया गया है। दोनों तरफ दो सेनाएं खड़ी हैं, कौरवों की सेनाएं खड़ी है, पांडवों की सेना खड़ी है, दोनों ने व्यू रचना कर दी, लड़ाई की तैयारी कर दी, अपने अस्त्र शस्त्र हाथ में उठा लिए, शंख बजा लिए। कौरवों का सेनापति भीष्म पितामह, पांडवों का सेनापति धृष्टद्युम्न है, द्रुपद पुत्र, पांडवों की सेना का रक्षक भीम है, और दोनों सेनाएं, कौरवों की सेना 11 अक्षौणी है, पांडवों की सेना 7 अक्षौणी छोटी है। अब दोनों सेनाओं में युद्ध के लिए घोषणा हो चुकी, शंख बज चुके, लेकिन एक बात यहां याद रख लो, पहला शंख किसने बजाया? गीता पढ़ोगे तो पहला शंख लिखा है सिंहनादम विनद्योच्छय भीष्म पितामह ने पहला शंख बजाया। जिसने पहला शंख बजाया, लड़ाई का युद्ध की घोषणा उसने की। तो लड़ाई कौरवों ने की, पांडवों ने नहीं की। कोई पांडवों को नहीं कह सकता है, आतिताई थे, लड़ाई के लिए पहले नहीं गए। पहला शंख भीष्म पितामह ने बजाया, लेकिन पांडवों ने फिर भी शंख नहीं बजाया। वो एक ही एक पुरुष को देख रहे थे, कृष्ण को देख रहे थे, दे वर जस्ट वॉचिंग कृष्ण। जब कृष्ण क्या करता है, कृष्ण तो उस वक्त अपना शंख निकाला, पांच जन्यम ऋषिकेशो, जैसे ही कृष्ण ने अपना शंख बजाया, अर्जुन तो तैयारी था, देव दत्तम धनंजया पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीम कर्मा विरको धरा। तब तो भीम ने अपना शंख बजाया, अर्जुन ने देवताओं का दिया हुआ शंख बजाया, और फिर अनंत विज्यम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठर, युधिष्ठर ने शंख कौन सा बजाया, बोला ये अनंत, ये कृष्ण अनंत है, इसकी विजय होगी, अनंत विज्यम, हम तो इनकी सेवा में खड़े हैं, इन्होंने शंख बजा दिया है तो अनंत की विजय होगी। अनंत विज्यम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेव च मणि पुष्प सघोषो मणि पुष्प को शिखंडी च महारथा। फिर ये सब ने अपने अपने शंख बजाए, हुआ क्या, कृष्ण के शंख की और अर्जुन के शंख की ध्वनि ने धृतराष्ट्र के बेटों की दिल को चीर दिया, वैदार्यति हृदय, हृदय को विद्रीण कर दिया, भयभीत हो गए, जिसका दिल ही टूट गया वो क्या लड़ेगा, मरने से पहले उनका दिल ही टूट गया। लेकिन तब अर्जुन का एक नाम है कपिध्वज, शस्त्र संपाते धनुर्धमाय पांडव, कपिध्वज अर्जुन का एक नाम है, कपि कहते हैं हनुमान को, जिसके रथ के ऊपर हनुमान का झंडा है, रामायण का हनुमान, महाभारत में कृष्ण जिस रथ के ऊपर बैठे थे उस रथ के ऊपर बैठा हुआ था हनुमान जी। कैसे आके बैठा था मालूम है, दो कथाएं हैं, एक कथा हमने पहले बताई थी, भीमसेन की एक पुष्प लेने जा रहा था बद्री का आश्रम में द्रौपदी को देने के लिए, और रास्ते में बूढ़ा बांदर बैठा अपनी पूंछ को लंबी लटका के बैठा था, भीम उसके ऊपर से जाना नहीं चाहता था, उसने बोला ठीक है फिर इसको हाथ से उठा दो, उठाने लगा, भीम का कितना बल था, भीम उठा नहीं पाया, तब तो समझा ये कोई साधारण नहीं है बांदर, बोला आप कौन है, देवता है, बोला मैं कौन हूं आप कौन हो, बोला मैं भीम हूं वायु का पुत्र हूं, बोला मैं भी वायु का पवन पुत्र हूं हनुमान हूं। तो दोनों भाई आपस में मिले गले, तब भीम ने कहा भैया युद्ध हो जाएगा आप हमारी सहायता करना, हनुमान ने कहा अब युद्ध नहीं करता हूं मैं, लेकिन तुम्हें एक वचन देता हूं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के ऊपर बैठेंगे तो मैं अर्जुन की ध्वजा में रहूंगा, और ऊपर से मैं ऐसा ललकारूंगा कि आपके शत्रु दूर से भयभीत होके भाग जाएंगे, भीम तुम गदा हाथ में लेना और मैं ऊपर से ललकारूंगा, तुम चिंता मत करो मैं आपके साथ रहूंगा। दूसरी कथा एक आती है, अर्जुन और हनुमान आपस में मिले एक नदी के किनारे, अर्जुन और हनुमान एक नदी के किनारे मिले, हनुमान को अर्जुन ने कहा भगवान राम, जिसके लिए गीता में शब्द आया है शस्त्र भृताम रामो अस्मि, दसवें अध्याय में भगवान अपनी विभूति में बताए शस्त्र भृताम रामो अस्मि, शस्त्र चलाने वालों में राम मैं हूं, मतलब जो तीर चलाने में सबसे सबसे महान है भगवान राम है, उसका नाम भी है सारंग पाणी, सारंग कहते हैं धनुष को, पाणी मतलब हाथ, जिसके हाथ में धनुष रहता है वो सारंग पाणी भगवान राम का नाम है, कृष्ण का नाम है, कृष्ण का नाम है चक्र पाणी, जिसके हाथ में सुदर्शन चक्र होता है, और भगवान शंकर के लिए भी भगवद गीता में है रुद्राणाम शंकरश्च अस्मि, जो 11 रुद्र है उनमें शंकर मैं हूं, शंकर मेरा स्वरूप है रुद्रों में। तो राम जी, अर्जुन कहता है हनुमान राम के पास धनुष था बाण था, समुद्र के ऊपर बाणों की सेतु बना ली होती, ब्रिज ऑफ द एरोज, और आप उसके ऊपर सब योद्धे चले गए होते, आप सबको पत्थर कटा करने के लिए राम ने क्यों लगा दिया। हनुमान कहने लगा हम त्रेता युग की बात कर रहे हैं, और हमारे साथ जो सैनिक थे वो सैनिक 18-18 फुट के लंबे थे और बहुत चौड़े लंबे चौड़े थे, बाणों की से नहीं चल सकती सेतु। बोला देखो मैं सेतु बना सकता हूं। अर्जुन ने बोला देखो ये नदी है ना, ये रिविया है, ग्रैंड रिविया आपकी। अर्जुन ने अपने बाण लगाए, सेतु बन गई, ब्यूटीफुल ब्रिज तैयार हो गई। हनुमान को इसके ऊपर चल के दिखाओ, देखो ये ब्रिज बन गई कि नहीं। हनुमान ने अपना विराट रूप बनाया, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और एक एक बाल में एक इतना बड़ा बड़ा पत्थर बांधा, एक हनुमान बड़ा हो गया, फिर चारों ओर इतने पत्थर और एक पांव ऐसे रखा तो सारी नीचे चली गई ब्रिज। अब अर्जुन बोलता हे कृष्ण मेरी लाज रखना, हे कृष्ण मेरी लाज रखना। हनुमान बोलता जय सिया राम टूटनी चाहिए। हनुमान क्या बोलता है जय सिया राम सेतु टूटनी चाहिए, और अर्जुन कहता जय श्री कृष्ण सेतु नहीं टूटनी चाहिए। अब एक पांव रखा है हनुमान, दूसरा पांव रखने जा रहा है तो नीचे देखा ब्लड खून की धारा। हनुमान नीचे थोड़ा देखता है, अरे अरे ये तो भगवान राम पीठ देके, भगवान राम पीठ देके सेतु को बैठे हैं। एकदम कूद के हनुमान नीचे उतर गया। अर्जुन देखता है तो भगवान श्री कृष्ण उस सेतु को पीठ देकर बैठे हैं। अर्जुन दोनों ऐसे एक दूसरे को देख रहे हैं तो भगवान बाहर आए, कहा अब वो मुझे कह रहा है कि ये टूटना चाहिए और तुम कह रहे हो नहीं टूटना चाहिए, उसको राम दिख रहा है उसको कृष्ण दिख रहा है। तो इतने बीच में भगवान बाहर आके कहा, उस वक्त भी सेतु बना सकता था लेकिन इनकी महानता दुनिया में प्रकाशित करनी थी। अर्जुन ये भी मेरा भक्त है, तुम भी मेरे भक्त हो। दोनों भक्त आपस में गले मिले, तब अर्जुन ने कहा अब तो तुम मेरे साथ रहना, युद्ध में मेरा सहायता करना। बोला हां तुम्हारी ध्वजा के ऊपर मैं रहूंगा। तो अर्जुन का नाम कपिध्वज है, अर्जुन के रथ के ऊपर हनुमान है। और अर्जुन ने कहा भगवान श्री कृष्ण को दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले चलो। भगवान दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोण के सामने रथ को खड़ा करके बोलने लगे, पश्येताम कुरुनीति, देखो सामने तुम्हारे अपने रिश्तेदार खड़े हैं, ये गुरु है। अर्जुन घर से तो तैयार होके आया था लड़ाई करने के लिए, भगवान ने इशारा क्या किया, अर्जुन के दिल में मोह डाल दिया। अर्जुन अपने माता अपने पुत्र अपने भाई अपने बंधु अपने गुरुजनों के लिए लड़ाई न करने की बात करने बैठ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं, अब तो आपको धर्म का युद्ध करना पड़ेगा। और उसके लिए दूसरे अध्याय, पहले अध्याय में अर्जुन को हो गया विषाद। विषाद का मतलब है अर्जुन विषाद योग, इसको इसलिए कहते हैं। अर्जुन रोने लगा, अर्जुन परेशान हो गया, अर्जुन को पता नहीं लग रहा है मैं क्या करूं, लेकिन भगवान के सामने बैठ के रोया तो योग हो गया। तो दूसरे अध्याय में भगवान ने प्रसाद दिया, पहला अध्याय विषाद, दूसरा अध्याय प्रसाद। भगवान ने प्रसाद क्या दिया, आत्मा का ज्ञान दिया, आत्मा के अमर होने की कथा बताई, शरीरों को हमेशा खत्म होना है, आत्मा सदा रहती है, इसलिए अपने कर्तव्य कर्म को करना चाहिए। क्षत्रिय हो युद्ध करना तेरा धर्म है, लेकिन काम कैसे करना चाहिए, बुद्धि योग से काम करना चाहिए, बुद्धि योग से काम करो। और तीसरे अध्याय में कर्म योग की बात बताते हैं भगवान कि कर्म तो करना है लेकिन तुम कर्म मेरे लिए करो तो तू कर्म के बंधन से छूट जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हारे को ज्ञान की जरूरत है। इसलिए चौथे अध्याय में भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया और कहा कि इस दिव्य ज्ञान से तेरे सारे पाप नाश हो जाएंगे, जैसे लकड़ियां एक चिंगारी से जल के समाप्त हो जाएंगी। इस नाव में बैठ जाओ ज्ञान की, ज्ञान पलवे नैव संतरिष्यसि, ये ज्ञान की नाव में बैठने का सबको अधिकार है, आओ बैठो। भगवत गीता के ज्ञान की नाव में बैठोगे तो भवसागर पार कर जाओगे। तब पांचवें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को विशेष रूप से कहा, मैं तुम्हारा सुहृद मित्र हूं, सुहृद सर्वभूतानाम, सबका मैं मित्र हूं, केवल मुझको जानो कि मैं सबका मित्र हूं, जो कुछ भी तुम कर रहे हो ये मेरे लिए है और मैं सबका मालिक हूं, तो तुमको शांति मिलेगी, नहीं तो अशांत रहोगे। तो शांति कैसे मिलेगी? बोला मन को एकाग्र करोगे तो शांति मिलेगी। छठा अध्याय योग का आता है, मन को एकाग्र करने का। अर्जुन कहता है ये मन मुझसे एकाग्र नहीं होगा, ये तो चंचल है, ये तो बहुत तेज घूमता है, पता नहीं कहां चला जाता है। तब भगवान ने कहा दो रास्ते मन को वश में करने हैं, अभ्यासे न तो कौनते या वैरागे न सग्रियते। एक अभ्यास, अभ्यास का मतलब बार बार भगवान के नाम को जपना, इसको बोलते हैं अभ्यास। अभ्यास मीन्स रिपीटेशन ऑफ सेम थिंग अगेन एंड अगेन। अभ्यास मतलब हरे कृष्ण मंत्र जपना, और वैराग्य चार चीजों को विशेष रूप से छोड़ना। पहली चीज नशे को छोड़ना, ऑल इंटॉक्सिकेशन, वैराग्य। दूसरी चीज मांस आहार को छोड़ना, वैराग्य। तीसरी चीज विवाह से बाहर पर स्त्री पर पुरुष संघ को छोड़ना, तीसरा वैराग जुआ नहीं करना, चौथा वैराग। ये चार वैराग और एक जप, ये करोगे तो मन तुम्हारा वश में हो जाएगा। अर्जुन बोलता है ये करना तो शुरू करूं लेकिन पूरा नहीं करूं, बीच में मर जाऊं तो नो न राम मिला न दाम मिला। भगवान ने बोला परवाह नहीं करो, ना न एह न म उत्र कल्याण कृत दुर्गतिम तात गच्छति। अरे बेटे जो भला काम करते हैं उसका इस दुनिया में भी बुरा नहीं होता है, उस दुनिया में भी बुरा नहीं होता है, और उसको उसको तो दूसरे जन्म में स्वर्ग के सुख के बाद किसी धनी के घर में जन्म होगा। श्रीमताम सुचिमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते अथवा योगी नाम कुले भवंती धीमताम। नहीं तो किसी महात्मा के घर में जन्म होगा, साधु के घर में जन्म होगा। आप जैसे भले मानस बन के भगवद गीता सुनने का मौका मिलेगा तब उसको पुराने जन्म की कमाई याद आ जाएगी, और भगवद गीता सुनते ही भगवद गीता उसको पढ़ने का मन होगा, भगवान का नाम जपने का उसका इच्छा हो जाएगी। तब भगवान कहते सब योगियों में महान योगी वो है, योगी नाम अपि सर्वेशां मदगतर अंतरात्मा श्रद्धावान यो भजते माम समय युक्तत्वो मता, जो प्रेम से मेरा भजन करता है वो महान योगी है। तब भगवान को अर्जुन पूछता है कि आपका भजन कैसे किया जाए, तब सातवां अध्याय शुरू होता है। कल गीता जयंती है, मोक्ष दा एकादशी है, गीता पढ़ने से बंधन मुक्त हो जाता है, दुख ताप संताप समाप्त हो जाता है। कल आप पधारिएगा हमारे मंदिर श्री श्री राधा गोलोकानंद फिनिक्स फिनिक्स मंदिर में आइएगा। सातवें अध्याय से आगे फिर गीता के ऊपर चर्चा करेंगे। आज छह अध्यायों को हमने बहुत जल्दी आपको संक्षेप में सुना दिया। हरे कृष्णा, धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, किसी का कुछ प्रश्न है? एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन आर कमेंट?